ओम शांति। 15 अप्रैल 1981। जितना याद में रहेंगे उतना किसी भी प्रकार की हलचल को अचल बना सकते हैं। नथिंग न्यू, यह पाठ सदा पक्का रहे तो हलचल हो ही नहीं सकती। साइट सीन को देखकर रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ते जाएंगे। ऐसे बहादुर होना, हिम्मतें बच्चे, मदते बाप। जो भी कुछ होता है साइट सीन है। साइट सीन के कारण मंजिल को नहीं छोड़ा जाता। चलते चलो, पार करते चलो तो मंजिल सदा समीप अनुभव करेंगे। आज यहां है, कल क्या अपने राज्य में होंगे। वातावरण को पावरफुल बनाने वाले बनो, हिलने वाले नहीं। याद के पावरफुल प्रोग्राम रखो, वाचा सर्विस से भी ज्यादा याद के प्रोग्राम रखने चाहिए। वाणी में आने से भी कहां कहां नीचे आ जाते हैं, इसलिए कुछ समय याद का किला मजबूत बनाकर फिर सेवा के मैदान पर आओ। जो बात आती है वह चली भी जाती है, जैसे बात आती है और चली जाती है, तो आप समझो यह साइट सीन आई और चली गई। वर्णन भी नहीं करो, सोचो भी नहीं। इसको कहा जाता है फुल स्टॉप। 15 अप्रैल 1981, बाबा कह रहे हैं, जितना याद में रहेंगे उतना क्या होगा, किसी भी प्रकार की हलचल को अचल बना सकते हैं। नथिंग न्यू, यह पाठ पक्का करो तो हलचल हो ही नहीं सकती। साइट सीन को देखकर रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ते रहेंगे। ऐसे बहादुर होना, हिम्मतें बच्चे, मदते बाप। जो भी कुछ होता है, क्या है, साइट सीन के कारण मंजिल को नहीं छोड़ा जाता। चलते चलो, पार करते चलो तो मंजिल सदा समीप अनुभव करेंगे। आज यहां है, कल अपने राज्य में होंगे। वातावरण को पावरफुल बनाने वाले बनो, हिम्मत वाले नहीं, हिलने वाले नहीं। याद के क्या करो, प्रोग्राम, पावरफुल प्रोग्राम रखो। वाचा सर्विस से भी ज्यादा याद के प्रोग्राम रखने चाहिए। वाणी में भी आने से कहां कहां क्या हो जाता है, नीचे आ जाते हैं, इसलिए कुछ समय याद का किला मजबूत बनाकर फिर सेवा के मैदान में आओ। जो बात आती है वह चली भी जाती है, जैसे बात आती है और चली जाती है, ऐसे आप समझो यह साइट सीन आई और चली गई। उसका क्या करो, क्या नहीं करो, वर्णन भी नहीं करो, और क्या नहीं करो, सोचो भी नहीं। इसको कहा जाता है फुल स्टॉप। ये फुल स्टॉप की परिभाषा है। याद के पावरफुल प्रोग्राम रखो, याद के किले को मजबूत करो। याद में रहो तो किसी भी प्रकार की हलचल में अचल रह सकेंगे। और कौन सा पार्ट पक्का करो, नथिंग न्यू। नथिंग न्यू अर्थात जो पहले से पता है, नया कुछ भी नहीं है। सबसे पहले नथिंग न्यू शब्द ओल्ड टेस्टामेंट में आया है, बाइबल में, इक्लिसियास्टिक्स, उसमें लिखा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। नथिंग न्यू अंडर द सन, इस सूरज के नीचे, इस धरती पर ऐसा कुछ भी नया नहीं है। लगभग 25 बार नथिंग न्यू शब्द आया है, और किसी लिटरेचर में यह शब्द देखने को नहीं मिलता है। तो नथिंग न्यू अर्थात कुछ भी नया नहीं है। बाबा ने कहा इस पाठ को पक्का करो। कौन से पाठ को? नथिंग न्यू, क्योंकि ये तुम्हारी यात्रा है, इस यात्रा में बहुत सारे साइट सीन्स आएंगे, बहुत सारी बातें आएंगी, बहुत सारी व्यक्ति परिस्थिति बहुत कुछ आएगा, उन सभी में इस पाठ को पक्का रखो। स्वामी विवेकानंद के जीवन में वर्णन है, जब वो बहुत छोटे थे 8 साल के, तो उन्होंने अपने पिताजी से एक बार पूछा था कि मैं अपने जीवन में कैसे स्वयं को चलाऊं आगे के लिए। तो उन्होंने, उनके पिताजी ने एक शब्द वहां पर कहा था और जो उन्होंने बाद में कहा कि हमेशा के लिए मुझे याद रहा, वो वाक्य था कि जीवन में कभी भी किसी भी बात से आश्चर्यचकित नहीं होना। डू नॉट गेट सरप्राइज्ड बाय एनीथिंग इन लाइफ। बाद में उन्होंने अपने भाषणों में कहा, कभी कभी मैं आलीशान महलों में रहा, कहां कहां मेरा भव्य स्वागत हुआ और कहां कहां मैं फुटपाथ में सोया, कहां कहां झोपड़ियों में सोया, कहां कहां किसी गांव में प्रवेश किया तो लोगों ने चंडाल चंडाल कहकर भगाया। किसी भी बात से आश्चर्यचकित नहीं होना, फुल स्टॉप अर्थात नो सरप्राइज, फुल स्टॉप नथिंग न्यू अर्थात नो सरप्राइज, नथिंग न्यू अर्थात नो फियर, किसी भी बात का भय नहीं, नथिंग न्यू अर्थात कोई एंग्जाइटी नहीं, कोई बेचैनी नहीं। नथिंग न्यू की अर्थात बहुत सारी परिभाषाएं हैं, नथिंग न्यू अर्थात कोई प्रश्न नहीं, यह क्यों यह क्या। नथिंग न्यू जो अवस्था है ये बहुत संपूर्णता की अवस्था है, जैसे व्यर्थ से मुक्त संपूर्णता की स्थिति है, वैसे नथिंग न्यू भी संपूर्णता की ही स्थिति है। तो आज हम थोड़ी इस पर चर्चा करेंगे। नथिंग न्यू के कुछ अर्थ है अलग अलग, कुछ अर्थ हमें पता है और शायद कुछ अर्थों पर हमने चिंतन नहीं किया है। सबसे पहला अर्थ नथिंग न्यू का, एक दूसरे अर्थों में नथिंग न्यू अर्थात इस संसार में नया कुछ भी नहीं है, मतलब यहां देखने जैसा कुछ भी नहीं है, ये वैराग से संबंधित है। नथिंग न्यू जो कहा ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल में सोलोमन ने, ये जो लिखा है इक्लेसियास्टिक्स में बार बार 25 बार जो शब्द आया है, वो इसी अर्थ से लिखा है कि ये संसार जो है मोनोटोनस, यहां पे नया कुछ भी नहीं है, वही जन्म है, वही मृत्यु है, वही दिन है, वही रात है, वही बीमारियां, वही बुढ़ापा, सब कुछ वही वही है संसार में। ऐसे इस संसार में नया कुछ भी नहीं है, नथिंग न्यू अंडर द सन, अंग्रेजी में कहावत आती है, मुहावरा प्रयोग किया जाता है बार बार, नथिंग न्यू अंडर द सन। तो पहला नथिंग न्यू का जो अर्थ है वो है वैराग से संबंधित। क्या पाना है इस संसार से, क्या देखना है इस संसार में, अनित्यम असुखम लोकम, कुछ भी प्राप्त करने जैसा यहां कुछ नहीं है, यहां जो है सब पुराना ही है। दो, हम दो चीजों की चर्चा करेंगे, एक तो नथिंग न्यू और दूसरा एवरीथिंग न्यू, उसकी दूसरी चर्चा है। पहली चर्चा है नथिंग न्यू की, तो पहला अर्थ है उसका, ऐसे 8 अर्थ निकालेंगे। पहला अर्थ है वैराग से संबंधित, कि संसार में कुछ भी नया नहीं है, क्यों आकर्षित हो इस संसार में, इसमें फिर सारे आकर्षण, सारी लग्जरीज, सारे साधन, सारी सुख सुविधाएं, सब कुछ आता है, और यहां से किसी भी बात में जो कहा आश्चर्य होने की आवश्यकता नहीं है। दो शब्द है, एक आश्चर्य एक विस्मय, इनमें अंतर है। शब्दकोश कहता है दोनों ही सेम है, डिक्शनरी के अर्थों से एक है सरप्राइज एक है वंडर, दोनों में क्या अंतर है? डिक्शनरी कहती है कि दोनों ही सेम है, शब्दकोश कहता है आश्चर्य और विस्मय दोनों ही सेम है, परंतु दोनों में कुछ बुनियादी भेद है। आश्चर्य बाहर का है, विस्मय आंतरिक है। आश्चर्य थोड़ा सा उसमें आप हिल सकते हो, विस्मय अर्थात आंतरिक योग से संबंधित है। आंतरिक विस्मय अर्थात वंडर, इतनी शक्ति आत्मा में है हमें पता ही नहीं था, हमने ये पाया पता ही नहीं था, वंडर विस्मय है। अंतर की यात्रा है विस्मय, आश्चर्य बाहर की यात्रा है। आश्चर्य में मनुष्य हिल जाता है, थोड़ा सा नेगेटिव है, विस्मय कंप्लीट पॉजिटिव है। तो इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे हम आश्चर्यचकित हो, इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसमें जो हमें आकर्षित करे। क्या आकर्षित करेगा? देह अंग अंग में क्या है? कल क्या कहा था ना, यहाँ अंग अंग में सुगंध है। देह में फंसा हुआ व्यक्ति देह में ही आकर्षित होता है, जो देह के भान से थोड़ा ऊपर उठता है उसका अपनी देह से भी आकर्षण कम हो जाता है, और जब अपनी देह से आकर्षण कम हो जाएगा तब दूसरों की देह से भी आकर्षण कम हो जाएगा। सारा पुरुषार्थ दूसरों की देह के आकर्षण कम करने का नहीं है, स्वयं की देह का। ये जो नार्सिसिस्टिक एटीट्यूड है, नार्सिसिस्ट नाम का एक व्यक्ति था माइथोलॉजी में, विदेश की, वो ऐसा व्यक्ति था कि एक दिन तालाब के किनारे बैठा और अपनी परछाई को देखा और मोहित हो गया। मैं इतना, वो कौन इतना सुंदर है, और वहीं बैठा रहा कितना घंटों तक, और फिर पानी हिल जाता था फिर रुक जाता था जब तक उसकी परछाई फिर ना आ जाए, और घंटों वहीं बैठा रहता था। द मैन हु फेल इन लव विथ हिमसेल्फ, वो नार्सिसिस। तो ऐसे लोग जो केवल खुद से ही प्रेम करते हैं या खुद के ही देह से प्रेम करते हैं उन्हें नार्सिसिस्ट कहा जाता है। उसी नाम से एक पौधा भी है जो कि तालाब के किनारे उगता है और तालाब के पास ऐसा झुकता है, नार्सिसिस प्लांट जिसको कहते हैं, उसको हिंदी में कुछ अच्छा सा नाम भी है, बहुत सुंदर एक नाम है उसको। तो स्वयं की देह में ही जिसका प्रेम है वो दूसरों की देह में फंसता रहेगा, आकर्षित करती रहेगी। परंतु यहाँ नथिंग न्यू अर्थात नया कुछ भी नहीं है, ये जो शरीर है झूठन के झूठन के झूठन का झूठन है, लेफ्ट ओवर ऑफ द लेफ्ट ओवर ऑफ द लेफ्ट ओवर ऑफ द लेफ्ट ओवर। थाली में जो खाना बचा था जो झूठन था, फिर वो झूठन को किसी और ने खाया, फिर थोड़ा सा छोड़ा, फिर उसको और किसी ने खाया, फिर थोड़ा सा छोड़ा, फिर किसी और ने खाया, फिर थोड़ा सा छोड़ा। वैसे ये जो देह है ये वैसा ही है, जो 10 लोगों ने खाया है और वो थोड़ा सा, वो खाएंगे क्या? हम इस देह को पता नहीं हमने और कितनों ने भोगा है हमारी देह को। और यदि हम सोचे कि ये देह आकर्षित करने वाली है दूसरे की, वो झूठा है, फिर भी व्यक्ति उसी को चाहता है। काम की परिभाषा है दूसरों से सुख प्राप्त करने की इच्छा, ये काम विकार की परिभाषा है। प्रेम की परिभाषा है सुख स्वयं में ही है, इधर ही सुख है, परंतु व्यक्ति सोचता है किसी और में सुख है, ये जो दूसरा है ये मुझे सुख देगा, ये कामना ये इच्छा ये अभिप्सा काम को जन्म देती है। और जब उसे ये समझ में आएगा कि सुख वहां है ही नहीं, सुख तो यही है, कोई दूसरों को प्रेम करता है दूसरों के लिए नहीं। श्वेता श्वेतर उपनिषद में लिखा है पति अपने पत्नी को प्रेम करता है पत्नी के लिए नहीं अपने लिए, पत्नी अपने पति को प्रेम करती है अपने लिए, खुद उसके लिए नहीं खुद के लिए। माँ अपने बेटे को प्रेम करती है बेटे के लिए नहीं अपने लिए, बेटा अपनी माँ को प्रेम करता है माँ के लिए नहीं अपने लिए। सोचो इसके ऊपर कैसे। तो नथिंग न्यू अर्थात इस देह में कुछ भी नया नहीं है, झूठा है, किसी का झूठा किया हुआ वो देह है संसार। यहां पर कुछ भी नथिंग नया कुछ भी नहीं है, पुराना हो चुका है, ये जर्जरी भूत जर्जर हुआ, ये समाज, ये संसार, यहां की सभ्यता है, यहां की रूढ़िवादिता है, यहां के ट्रेडिशंस, यहां के रस्म रिवाज, सब कुछ झूठा है, सब कुछ पुराना है, नया कुछ भी नहीं है यहां। तो नथिंग न्यू की सबसे परिभाषा, पहली परिभाषा वैराग से संबंधित है, दूसरी परिभाषा परिस्थिति सरकमस्टांसेस, जो परिस्थिति आ रही है, कई बार आ चुकी है, इसके लिए इन परिस्थितियों में भी कुछ नया नहीं है, और जो आ रही है बाबा कह रहे वो चली जाएगी, दिस टू विल पास, कहा था ना वो राजा का, बड़ी बड़ी परिस्थिति आती है, हर बार अंगूठी लास्ट एक बार अंगूठी खोल कर देखता है तो वहां पर एक ही मंत्र लिखा रहता है कि ये भी चला जाएगा, कुछ भी परमानेंट नहीं है। बताया था एक बार भी, जेन मास्टर बोकोजो के पास उसका शिष्य आता है, कहता है नया नया आया हुआ शिष्य, कहता है मेरा बिल्कुल मेडिटेशन नहीं लगता, मेडिटेशन करने बैठता हूं तो पैर दर्द होते, मच्छर काटते हैं, बिल्कुल बुद्धि भटकती है, यहां वहां क्या करूं, तो कहते ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है, दिस टू विल पास, ये चली जाएगी ये परिस्थिति। कुछ समय के बाद उसका अच्छा योग होने लगता है, ध्यान लगने लगता है, तो कहता है अब बहुत अच्छा है, मेरा मन भटकना बंद हो गया है, मैं अच्छे से बैठ सकता हूं लंबे समय तक, मच्छरों का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं है और मैं अच्छे से योग करता हूं। वो कहता है चिंता मत करो, ये भी चला जाएगा, वो चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, सब कुछ में प्रवाह है, फ्लो है, फ्लक्स है, फ्लक्स, एवरीथिंग इज इन द स्टेट ऑफ फ्लक्स, कुछ भी है और रहेगा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो परिस्थिति आज एकदम सब कुछ हमारे विरुद्ध है, प्रतिकूल परिस्थितियां है, अनुकूल कुछ भी नहीं है, जरूरी नहीं है कि हमेशा ही रहेगा, सब बदलेगा। अंग्रेजी में कहते द ओनली सर्टन थिंग इज अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता ही एक निश्चित स्थिति है संसार में। अगर एक निश्चित कुछ है संसार में तो वो है अनिश्चितता। जितनी भी परिस्थिति है आ रही है जा रही है, एक तो ये अर्थ है नथिंग न्यू का कि नया कुछ भी नहीं है, दूसरा जो भी परिस्थिति आई है इस परिस्थिति को हमने पार किया था, इसके लिए ये कोई पहली बार नहीं कर रहे, ये जो परिस्थिति आई है पहली बार नहीं है। आइंस्टाइन का वो जो सारा कुछ जितना उसने बड़ी लैब थी वो सब सारी जल रही थी, तो उसने अपने बेटे को बुलाया और वो खड़ा था और देख रहा था इतना सारा पूरा उसका रिसर्च, उसने कहा कि अपनी मां को बुला के लेके आओ, ऐसा सीन वापस देखने को नहीं मिलेगा। हमने जो कुछ व्यर्थ किया था वो सब जल रहा है, अभी फिर से नया चालू करते हैं, फिर से नया बनाएंगे अभी सब कुछ। मतलब वो जो परिस्थिति आई, इतनी बड़ी परिस्थिति थी वो कि उसका जो भी रिसर्च था वो सब जल गया। उसने जो उसके बेटे से कहा, उसके बेटे ने 1950 का रीडर्स डाइजेस्ट में अपना एक अनुभव लिखा था ये सारा, कि मेरे पिता ने मुझे ये कहा था कि अपनी मां को बुला के लाओ, ऐसा सीन कब देखने मिलेगा वापस। तो परिस्थितियां, एक तो नथिंग न्यू का एक अर्थ है कि जो आ रही है वो कुछ भी नई नहीं है, बहुत बार आ चुकी है, और दूसरा अर्थ है हम उन परिस्थितियों को हमने पार किया था, हम विजयी हुए थे, इसलिए कोई आश्चर्य नहीं, कोई दुख नहीं, कोई गम नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई पश्चाताप नहीं, कुछ भी नहीं उनका, वो आ रही है चली जाएगी, धैर्य पेशेंस, उतावला नहीं होना है, क्यों आई मेरे साथ ही क्यों आती है, हमेशा मेरे साथ ही, वाय मी, ये एक प्रश्न व्यक्ति को सताते रहता है जीवन भर, मैं ही क्यों। तीसरा नथिंग न्यू का अर्थ टाइम, टाइम से संबंधित। जो समय चल रहा है वर्तमान वो नथिंग न्यू, जो पास्ट हो गया वो नथिंग न्यू, और जो आने वाला है वो नथिंग न्यू। अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों ही के प्रति नथिंग न्यू। जो हुआ है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि नया था, ये तो होना ही था। हम कई लोग ब्राह्मण बनने के बाद बहुत सारी इन चीजों से मुक्त ही नहीं हो पाते कि मैंने ये कर दिया या वो कर दिया। अपराध भाव, गिल्ट कॉन्शियसनेस, अज्ञान में तो सारा संसार ही है, वो लोग भी वो कर रहे हैं, पर हम कभी कर दे तो वो छोटी सी बात होती है, परंतु उसकी जो अपराध भाव है वो इतना पकड़ लेता है कि अब ये अपराध भाव ही उसे आगे बढ़ने नहीं देता है। वो पुरुषार्थ को रोके हुए प्रायश्चित करना, पश्चाताप करना, रिपेंटेंस करना अच्छी बात है, परंतु निरंतर पश्चाताप की अवस्था है, उससे मुक्त ही नहीं हो रही आत्मा, तो वो भी वर्तमान में जीना नहीं हुआ, वो भी नथिंग न्यू की अवस्था नहीं है। जो हुआ वो हुआ, उससे अब सीख लो, पाठ लो और आगे बढ़ो। पास्ट, प्रेजेंट, प्रेजेंट में जो भी हो रहा है, जो भी, कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। हमें लगता है बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही है, वैसी हो रही है, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ये ऐसा होता है, यहां भी वैसा होता है, वहां भी वैसा होता है। वर्तमान के प्रति एक है भविष्य, जो भी होने वाला है हमेशा भविष्य के प्रति एक भय रहता है, अज्ञात का भय, फियर ऑफ द अननोन। क्या भय है पता नहीं, अज्ञात है, अनबिनोन, परंतु एक भय है उस भविष्य का, उसमें कुछ भी नया नहीं है। तो नथिंग न्यू का ये तीसरा संबंध। चौथा टाइम, फिर है पर्सन, व्यक्ति। जो भी व्यक्ति जीवन में आ रहे हैं वो पहले भी आए थे, जिनके साथ भी हिसाब किताब है वो आएंगे। हम ये नहीं कह सकते थे ये मेरे साथ ही क्यों आया, ये मेरा ही पार्टनर क्यों बना, इसको यही कमरा क्यों मिला, ये हमारे डिपार्टमेंट में ये लोग ही क्यों आ गए, वो डिपार्टमेंट में देखो कितने अच्छे शांति से रहते, योग भी करते, ज्ञान की चर्चा करते, और ये लोग हमेशा व्यर्थ की चर्चा करते। हमारे डिपार्टमेंट में, हमारे ही सेंटर में, हमारे ही घर में, हमारे ही ऑफिस में, समाज में, परिवार में, कम्युनिटी में, कम्यून में, ये लोग क्यों? कल तो पहले भी वही आए थे, अभी भी वही आए हैं और वही आएंगे, और उनका आना और उनके साथ हम पहले भी एडजस्ट हो गए थे, अभी भी हो रहे हैं और बाद में भी होंगे, इसके लिए आश्चर्य नहीं है। जैसे कहा दो शब्द है, आश्चर्य और विस्मय। आश्चर्य नहीं लाना है, विस्मय लाना है। हर चीज में आश्चर्य को रिप्लेस करो विस्मय से, वंडर। ये भी वंडर है, देखो मैं इतना अच्छा पुरुषार्थ कर रहा हूं, ये नहीं कर रहा हूं, और कैसी जोड़ी मिला दी। उस दिन किसी ने भेजा था ना, एक्सेप्ट जूतों की जोड़ी के अलावा कोई भी जोड़ी परफेक्ट नहीं है संसार में। अगर लग रहा है तो मन का वहम है। एक्सेप्ट द पेयर ऑफ शूज, एवरीथिंग इज इल्यूजन। अगर केवल जूतों की ही जोड़ी परफेक्ट है, बस उसके अलावा अगर दो व्यक्ति सोच रहे हो कितना अच्छा भगवान ने देखो कैसे हमको मिलाया, चाहे दोस्त, चाहे पति पत्नी, चाहे भाई बहन, कोई भी, एक ही जोड़ी परफेक्ट है बस, जूते वाली, बाकी कोई नहीं। तो परफेक्ट दिखने की बात नहीं चल रही है। आश्चर्य और विस्मय। आश्चर्य नहीं लाना है, क्या लाना है? विस्मय। ओहो, क्या लाना है? ओहो, मुरली में आता है ना, वाह, कितना आश्चर्य नहीं, कितना विस्मय है। वाह, एक इतना हंस और दूसरा बगुला और साथ साथ, वाह। अब ये है, इसमें कैसे चलना है, ये चल के दिखाओ। एक ही योगी और बाकी सारे भोगी, अब ये है परीक्षा की घड़ी। विस्मय, हर चीज में विस्मय, वंडर। कैसा वंडर है ये, जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको हर चीज कैसी विस्मय से परिपूर्ण होती है। डी एच लॉरेंस नाम का एक ऑथर हुआ है इंग्लैंड में, इंग्लिश नॉवेलिस्ट प्ले राइट। उसने लिखा है, एक बार एक छोटा सा बच्चा के साथ वो घूमते रहता है और वो बच्चा उसे पूछता है कि घास हरी क्यों है। घास जो है, why grass is green, तो उसको एकदम आश्चर्य हो जाता है। तो मैंने तो कभी सोचा नहीं, और मैं झूठा उत्तर तो दे सकता हूं, परंतु मुझे खुद ही पता नहीं है। हाँ, वैज्ञानिक उत्तर दे सकते हैं, परंतु जो उत्तर देंगे वो भी शायद झूठे ही होंगे। वो कह सकते हैं क्लोरोफिल के कारण, परंतु प्रश्न वही खड़ा रहता है, क्लोरोफिल क्यों घास में है, मनुष्य में क्यों नहीं है? फिर प्रश्न तो उस बच्चे का फिर भी वही रहेगा, वो आप उसका उत्तर नहीं दे सकते हो, विज्ञान भी नहीं दे सकता है। आप कहोगे इस केमिकल की वजह से या उसकी वजह से या इसकी वजह से, उसका प्रश्न है कि घास हरा क्यों है, विस्मय से भरा हुआ है वो। तो डीएच लॉरेंस कहता है, बेटा मुझे भी नहीं पता, मैं भी खोज कर रहा हूं, क्यों है ऐसी चीजें, आकाश नीला क्यों है, पानी गीला क्यों है, टमाटर लाल क्यों है, ये सारे प्रश्न ऐसे हैं कि इनके क्या उत्तर दे। वैज्ञानिक साइंस दे सकता है, परंतु जो भी उत्तर देगा फिर वो वहां क्यों है, ये उत्तर तो आएगा ही। विस्मय का भाव, आश्चर्य नहीं, और विस्मय ये भाव नम्रता लाएगा। आश्चर्य जो है भय को उत्पन्न करेगा, आश्चर्य जो है प्रश्नों को उत्पन्न करेगा, आश्चर्य जो है वो अहंकार को भी उत्पन्न कर सकता है, अगर उत्तर ढूंढ लिया तो। विस्मय की यात्रा विनम्रता की यात्रा है, आश्चर्य की यात्रा अहंकार की यात्रा है। विज्ञान आश्चर्य को ढूंढता है, ये क्यों, वो क्यों, वो क्यों, वो क्यों, वो क्यों, वो क्यों, वो क्यों। तो पर्सन, व्यक्ति, नथिंग न्यू, किसके संबंध में, व्यक्तियों के संबंध में। अच्छा है, वही वही आना चाहिए था, वही तो पाठ सिखाएगा कुछ। हर व्यक्ति एक टॉर्च लेकर आता है हमारे जीवन में, एक टॉर्च, एक जलती मशाल, और वो हमारे मन के किसी कोने पर फोकस करता है जहां एक विकार छिपा हुआ है जो हमें पता नहीं। यदि किसी हम एकांत स्थान पर चले जाए और चुपचाप 10 साल रहे और वहां सोचे, देखा मैं क्रोध से मुक्त हो गया, 10 साल में एक बार भी क्रोध नहीं किया, तो क्या ये क्रोध मुक्त अवस्था है? नहीं, क्रोध तो छिपा है। टॉर्च लेकर एक व्यक्ति आता है ऐसा, और वहां बराबर फोकस करता है, ये है, यहां पर क्रोध था, वो दिलाएगा क्रोध, और तब उसका क्या करो, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद तुम आए अपनी टॉर्च लेकर, तब तो मुझे पता चला कि काम अभी छिपा हुआ था, क्रोध अभी भी छिपा हुआ था, आसक्ति अभी भी छिपी हुई थी, संसार के प्रति अभी भी बहुत ज्यादा लगाव था। इट्स यू हु टोल्ड मी दैट, धन्यवाद। टॉर्चर करने वाला भी टॉर्च लेकर ही आता है, टॉर्च करने। एक दूसरा शब्द है टू टॉर्च, टू टॉर्च मतलब बर्न, जला देना। तो जब भी कोई टॉर्चर करने आए तो उसके हाथ में क्या देखना, टॉर्च। हमारे मन का एक अंधेरा कोना है जिसे प्रकाशित करने, आलोकित करने वो आया है, नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा, क्योंकि अवचेतन के अंधेरी गुफा में इतना कुछ छिपा है, हमें कैसे पता चलेगा। इसके लिए बाबा ने ये सेवाएं दी है, क्योंकि माया तो यही आती है। कोई अगर कहे चुपचाप योग करो, कौन सी माया है, सेवाएं छोड़ दो खाली योग करते बैठो, माया नहीं है यहां। तो व्यक्ति, उसके बाद में टाइम प्लेस पर्सन, उसके बाद है माया, नेक्स्ट पॉइंट है नथिंग न्यू का माया। इसके संबंध में नथिंग न्यू क्या, बाबा ने पहले ही कह दिया माया आएगी, इसके लिए आश्चर्य क्या? विकार आएंगे, संस्कार प्रकट होंगे जो छिप गए हैं, जो खत्म हो गए हैं। एक मुरली है, जो तुम ज्ञान में आते हो तो बहुत सारे पेपर आते हैं, फिर पास कर जाते हो, स्थिर होते हो, फिर आगे बढ़ते हो, परंतु फिर से वही पेपर आएंगे। एमए में बीए का पेपर आएगा, अव्यक्त महावाक्य। एमए में बीए का पेपर आएगा, अभी एमए कर रहे हो, बीए तो कर लिया, परंतु उस एमए में फिर से बीए का पेपर आएगा। ये अव्यक्त महावाक्य है बाबा के। मुरली की डेट मुझे याद नहीं है, परंतु है। तो माया आएगी, एक तो यहां पर नथिंग न्यू, आश्चर्य नहीं होना है कि मुझ में ये कैसे भाव प्रकट हो गया। सब होगा, 10 साल के ब्रह्मचर्य के बाद भी व्याभिचार के संकल्प आ सकते हैं। व्यक्ति सोचेगा अब तो मैं ब्रह्मचारी हो गया, पूर्णपने पूर्ण रूप से सुरक्षित हूं, उसी घड़ी उसी क्षण अचानक धड़ाम से आत्मा नीचे गिरेगी। एक पल असावधानी का, इन दैट मोमेंट लाइज द इटर्निटी। वो ही पल है जिसमें स्वयं को सावधान करना है, एक पल, 1 सेकेंड। एक तो ये, दूसरा हम ही माया जीत बने थे। इसमें आश्चर्य क्या है? जो हमने कई बार बने हैं अब फिर से बनना है, तो नथिंग न्यू। तो माया के प्रति पांचवा कैसे हो सकता है? सबसे पहला नथिंग न्यू, अर्थात ये संसार। दूसरा परिस्थिति, तीसरा व्यक्ति, फिर समय, फिर माया, फिर परिस्थिति, व्यक्ति और फिर स्थान। स्थान के बारे में बताएं? हाँ, पहले स्थान ले लेते हैं। स्थान, टाइम, प्लेस, पर्सन। स्थान, स्थान के प्रति क्या नथिंग न्यू? स्थान के प्रति क्या नथिंग न्यू? नहीं, ऐसे बैठे थे वो तो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट हो गया। और दूसरा, कई लोगों को स्थान से कंप्लेंट है, घर से कंप्लेंट है, सेंटर से कंप्लेंट है, ऑफिस से कंप्लेंट है, उस स्थान से कंप्लेंट है। परंतु इसी स्थान पर बैठकर हम संपूर्ण बने थे एक समय। ये जो कमरा है ना, हम सोचते वो बाजू वाला कमरा अच्छा है, वो मिलना चाहिए, ये डिपार्टमेंट से ये वाला स्थान अच्छा नहीं है, वो वाला मिलना चाहिए। स्थान, स्थान में भी इसी स्थान पर बैठकर संपूर्ण। कमल जो है कहां पर बैठकर खिलता है? उस कीचड़ में। अगर उसको वहां से निकाल दो और अच्छे से जलाशय में, जिस जहां पर बहुत स्वच्छ पानी है, शायद वहां ना खिले। प्रतिकूल परिस्थिति में संपूर्ण बना जाता है, एडवर्स सिचुएशंस में। शेक्सपियर ने लिखा है, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। ये जो एडवर्सिटी है, विपरीत परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति है, इसी में संपूर्ण बनाया जाता है। विपरीत स्थान जो है, उसी स्थान में बैठकर संपूर्ण बना जाता है। तो इसमें भी नथिंग न्यू। और ये स्थान मिला, इसी में तो बने थे, इसमें क्या आश्चर्य है? और इसी स्थान पर रहकर हम लंबा समय तक निर्विघ्न अचल अडोल थे, क्या आश्चर्य है? तो स्थान, टाइम, प्लेस, पर्सन, उसके बाद में माया, और फिर कहा, फिर है प्रकृति। प्रकृति, प्रकृति के प्रति क्या नथिंग न्यू? जो भी हलचल हो रही है यहां, प्राकृतिक आपदा है, इसमें आश्चर्य क्या? पहले भी हुई थी, भूकंप ऐसे ही आएंगे। बाबा ने कहा, ताश के पत्तों जैसा सब गिरेगा, द फॉल ऑफ पॉम्पे होगा यहां पर, सब कुछ गिरेगा, मौत का बाजार गर्म होगा। इन आंखों से जो कुछ देखते हो, आंखों सहित सब कुछ नष्ट हो जाएगा, होलसेल मौत होगा, मौत का बाजार गर्म होगा, सब कुछ कह दिया है। नया कुछ है? कुछ भी नहीं है। एक तो ये, दूसरा उसी में हम ही प्रकृति चीत बने थे। इसमें आश्चर्य क्या है? इसमें नथिंग न्यू, नया कुछ भी नहीं है, हम ही बने थे, हम इस बार फिर बनेंगे, हमारी वैसी अचल अडोल स्थिति थी, इतनी सारी नेचुरल कैलमिटीज आ गई। इसलिए एक सूक्ष्म अभ्यास ये भी करना है अमृत वेले कि जो भी कुछ हमारा है घर परिवार वह सब नष्ट हो रहा है ये देखना, क्योंकि व्यक्ति जिस स्थान पर रहता है उस घर से उसका बहुत जबरदस्त लगाव रहता है, बहुत जबरदस्त अटैचमेंट, उसकी लैंड, उसकी प्रॉपर्टी, उसका बिजनेस, उसका फर्म, उसकी स्टेट, सबसे जबरदस्त अटैचमेंट होता है। ये नहीं कह रहे कि उसको छोड़ दो, करो सब, परंतु अभ्यास यही करो कि ये सब जलकर नष्ट हो रहा है। अच्छा अभ्यास है माउथ वॉटरिंग या एक ये भी अभ्यास है कि सारा संसार की सारी आत्माएं परमधाम जा चुकी है, ठीक है, लाशों की ढेर है नीचे और मैं लास्ट हूं, मैं लास्ट अभी यहां से निकल रहा हूं, लास्ट यहां से सबको टाटा बाय बाय करने कि हम जा रहे हैं, अभी आएंगे वापस थोड़ी देर में। ये एक अभ्यास है, सारे कुछ लाशों के ढेर लगे हैं यहां पर। हाँ, क्या नहीं होता है? किस बात का स्वार्थ? अच्छा पहले जाना है तो पहले जाओ तो वैराग, वैराग के लिए भी आवश्यक है, नहीं तो वो जो घर है वो सब कुछ है, कुछ न कुछ बहुत जबरदस्त मोह रहता है, उसको और बढ़ाऊं, उसको और बढ़ाऊं, उसको और बढ़ाऊं, और सजाऊं, इधर और कुछ लगाऊं, इधर वो कुछ करूं, उधर कुछ करूं, इधर ये सोफा उधर वो सोफा, इधर ये गलीचा उधर वो गलीचा, कुछ नया लाऊं, इसको और अच्छा कैसे अट्रैक्टिव बनाऊं। योग आश्रम, ये शब्द भूलना नहीं, तुम्हारा घर जो है वो ब्यूटी पार्लर नहीं है ना, तो वो तो फाइव स्टार होटल है, तुम्हारा घर क्या है? योग आश्रम। उसमें कोई आए तो वैसी सादगी हो, सिंप्लिसिटी हो। तो प्रकृति, हम ही प्रकृति चीत बने थे, और लास्ट शारीरिक बीमारी, नथिंग न्यू। आश्चर्य नहीं होना अचानक डायग्नोसिस हो गया कैंसर। व्यक्ति को दो चीजों से बहुत भय रहता है, मृत्यु भय और रोग भय। मृत्यु का बहुत ज्यादा भय रहता है, गहरे से गहरा भय अगर कोई है, नंबर वन वो है मृत्यु, और दूसरे नंबर का है बीमारी। सबसे गहरे में उसको बीमारी का भय रहता है। बीमारी से फिर पेन भी आएगा, सब कुछ बीमारी से सब कुछ आएगा, दर्द, उनको तो सबसे ज्यादा भय होता है, उनको भी भय रहता है। उसके पीछे थोड़ी दूसरी साइकोलॉजी है, उनको किन बात का भय होता है और कैसे मृत्यु का भय होता है। वो मृत्यु को मृत्युंजय, इसलिए कोई कभी भी खुदकुशी नहीं करेगा। क्या खुदकुशी करना मृत्युंजय की अवस्था है? ये मृत्यु से सबसे ज्यादा भय उन्हीं को है। इस पर कभी और चर्चा करेंगे। तो बीमारी आएंगी, हर प्रकार की बीमारी आएंगी, जो सोची नहीं थी वो आएगी, और कब आएगी? अचानक आएगी। बीमारी कभी निमंत्रण देकर नहीं आती है, मैं आ रही हूं ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से हमारा एक पेशेंट था, हम कहते थे अरे तुम्हारा ये बढ़ गया, वो कहता था क्या होगा, मरी जाऊंगा ना उसको कोई, हाँ बहुत सारे, केवल एक ही नहीं, वो जैसे उसका कोई भय ही नहीं नहीं पर ये निगेटिव भी ले सकता है व्यक्ति, इसके लिए कुछ कुछ अर्थों में रहना भी चाहिए। तो बीमारी जो है, ये देह जो है पांच तत्वों का है, एक तो तमो प्रधान है, जो भोजन हम खा रहे हैं, प्रकृति ही तमो प्रधान है, तो भोजन सत्व प्रधान कहां से होगा? भोजन हम भले उसमें कितना भी योग करो, वो सब करो, भोजन कहां बन रहा है? सबसे पहले धरती, प्रकृति, ठीक है, वो किसान कितना योगी है किसको पता, फिर वो फर्टिलाइजर, कीटनाशक जो डाले जा रहे हैं, वो कहां से आता है, कैसे आता है, उसमें फिर वो कीड़े वगैरह जो भी है, इतना सब करने के बाद ट्रांसपोर्ट, फिर प्रोसेसिंग, और फिर हमारे पास पहुंचता है, हम उसको वापस प्रोसेस करते बहुत सारा तो ये सारे इससे हम अगर ये सोचे कि ये तो एकदम, और फिर और एक चीज जो पैसा आ रहा है यहाँ पर क्या एकदम सफेद है कि थोड़ा थोड़ा काला भी है जो डाल रहे हैं लोग यज्ञ में ला ला के? पवित्र हो जाएगा पर हम कह रहे हैं कि बीमारी आएगी, ये एक कारण है। दूसरा, ये सब चलो छोड़ो, फिर भी हमारे अपने तो हिसाब किताब है। और जिन लोगों के जो जितना बड़ा योगी उसके बाकी से कम हिसाब किताब होते हैं, उसके हिसाब किताब अपने शरीर से ही चुकते ज्यादा होंगे, बाकियों को उसने इतने दुख दिए नहीं है। इसके लिए योगियों को तो ज्यादा ही बीमारी होती है। हम एडवर्टाइज तो बहुत कुछ करते हैं वो हमारी इनिशियल स्टेज है वो कोर्स जब कराया था कभी किसी ने बताया था कि ब्राह्मणों के हिसाब किताब ब्राह्मणों से चुकते होंगे? वो तो अभी बाद में पता चल रहा है तो प्रकृति कितने हुए? आठ। इन आठों चीजों में नथिंग न्यू, शुरुआत की हमने, ये संसार में नया कुछ भी नहीं है। हमें कोई आश्चर्य करने वाला, आकर्षित करने वाला कोई साइट सीन, पहला। दूसरा, परिस्थिति। परिस्थिति आएगी और चली जाएगी, नथिंग न्यू। पहले भी आई थी, हमने कई बार इसे पार किया, कोई पहली बार नहीं है, हजार बार, चलो दस बार ले लो। वो कल्प कल्प बहुत ऊंचा शब्द है, वो मत, कल्प कल्प के विजयी हम 10 साल, एवरी 10 ईयर्स की विजयी हाथ में, ऐसा भी कहा तो ठीक है कि 10 साल पहले भी ये परिस्थिति आई थी, बहुत अच्छे से पार किया था, अभी पार करेंगे। सेकंड, परिस्थिति। तीसरा, टाइम। टाइम, प्लेस, पर्सन, उसके बाद में माया, उसके बाद में नेचर, और उसके बाद में बीमारी। ये सारी चीजों की हलचल आएगी, ऐसा कोई नहीं कह सकता है कि नहीं आएगी। और बाबा से प्रार्थना भी मत करते बैठना, बाबा मेरी बीमारी ठीक करो। बाप कहते हैं, महावाक्य है, मैं तुम्हारी बीमारी ठीक करने नहीं आया हूं, प्लीज नो हेल्थ कंसल्टेशंस। मैं ना तो तुम्हारी बीमारी ठीक करने आयो, ना तो मरी हुई चीटी को ठीक करने आओ। तुम्हारे बिंदे में, तुम्हारे धंधे में घाटा हो गया, मैं क्या करूं? मेरा काम एक ही है, पतित से पावन बनाना। प्लीज डोंट ब्रिंग दिस नॉनसेंस, ये सब चीजें मेरे पास मत लाओ। बाबा मेरा ये हो रहा है, मेरा वो 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 हो रहा है, सारे उत्तर दे दिए। जाओ 70s की मुरली में ढूंढो, अव्यक्त मुरली है सारी। हाँ, फिर भी अब इतना सब बताने के बाद में भी कोई पूछेगा तो फिर तो वो क्या कहेगा? फिर तो ठीक है, कहेगा ठीक है, बाप को पता है, ठीक है, बच्चे हाँ सुप्रीम सर्जन है, वगैरह वगैरह वगैरह। पर उसी ने ये सब भी कह चुका है, सारा ज्ञान दे चुका है, हजार बार बताया, उसके बाद भी वही वही प्रश्न पूछते हैं तो क्या कहेगा? गुस्सा करेगा? गुस्सा तो कर नहीं सकता, उसको तो आता ही नहीं तो कैसे करेगा वो? क्या, हाउ ही विल रिस्पॉन्ड? वही वही प्रश्न उससे वही पूछा जाए तो वो ये सब करने नहीं आता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जैसा करे तो सफल चाखा, जिसने जो किया है उसको वो मिलेगा। कल एक भाई का फोन आया था, वो पहले इधर रहता था, अभी पढ़ाई के लिए US गया, और वहां उसने कुछ बाहर का खा लिया, और बाहर का खाने के बाद उसके मन में गंदे संकल्प आ रहे, तो वो मुझे पूछ रहा था, बाबा मुझे माफ करेंगे क्या, बाबा मुझे माफ करेंगे क्या? एक ही एक प्रश्न बार 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 पूछ रहा है। माफी इस ड्रामा में हो नहीं सकती, भगवान उवाच। वो जो महावाक्य तुमने सुने होंगे कि बाप को बता दो तो आधा माफ, वो तुम हल्के हो जाओगे, जरूरी नहीं है कि माफ हो जाएगा। माफी इस ड्रामा में हो नहीं सकती, महावाक्य है। जो किया है, जो भी पाप विकर्म कुकर्म विकल्प सबका तुम्हें भोगना पड़ेगा। और ज्ञान में एक का एक गुना, अज्ञान में एक का एक गुना, ज्ञान में सौ को एक का सौ गुना, ये एक ऑटोमेटिक मशीनरी है यहाँ पर। तो ठीक है, तो आज का क्या मंत्र है? नथिंग न्यू। जो भी होता है दिन भर, टाइम, प्लेस, पर्सन, सर्कमस्टांसेस, माया, नेचर, वर्ल्ड, कुछ भी, नथिंग न्यू। ओम शांति। अरे एवरीथिंग न्यू, इस संसार में सब कुछ नया ही नया है, पुराना कुछ है ही नहीं। नया दिन, नई सुबह, नई मुरली, नया बाप, नया उमंग, नया उत्साह, नई खोज, नया पुरुषार्थ, नए उमंग, नए नया योग, नई धारणाएं, नए साधन, नई सेवा, नए संकल्प, नए स्वप्न, नई वृत्ति, नई दृष्टि, नए भाव, नई भावनाएं, सब कुछ नया। आश्चर्य आश्चर्य, इस संसार में ऐसा कुछ भी पुराना है ही नहीं। ये एक विस्मय का भाव है, आहा कितना सब कुछ अच्छा है। नई दिन, ये नया दिन है, नया संगीत, नया गीत, नया योग, नया बाबा, नई मुरली, नए स्लोगन, नए वरदान, नया प्रश्न, नया महावाक्य, नए लोग, नया मधुबन, नित्य नया मधुबन, ऐसा नवीनता जीवन में, वाह। न्यू टाइम, न्यू नॉलेज फॉर द न्यू वर्ल्ड, न्यू माइंड, सब कुछ नया। न्यू माया, न्यू माया, हर दिन नई नई माया, नई नई नया माया की नए नए रूप। तो नयापन ढूंढना, ये है एवरीथिंग न्यू, वो था एवरीथिंग नथिंग न्यू, ये है एवरीथिंग न्यू हर दिन। पाश्चात्य जगत में एक कवि संत हुआ था, ईसाई इकहार्ट, वो कहता है उठता हूं तो सोचता हूं देखो फिर से सूरज उगाया है, कितना नयापन है उस सूरज के उगने में, इन चांद सितारों में कितना नयापन है, इस झाड़ में कितना नयापन है, इस मंदिर में, इस चर्च में, हर चीज में नया ही नया दिखाई दे रहा है मुझे। देयर इज नथिंग नथिंग ओल्ड, सब कुछ नया ही नया है इस संसार में। हे प्रभु, इस नवीनता के लिए तेरा लाख लाख धन्यवाद। ओम शांति।